एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम जिनकी जिंदगी और विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर, और हम उनके संस्मरण ए फुल लाइफ रिफ्लेक्शंस एट 90 के आईने में उनके जीवन को देखेंगे।
जी, ये किताब 2015 में आई थी जब वो 90 साल के थे, और ये सिर्फ एक राजनीतिक दास्तान नहीं है बल्कि एक बहुत लंबे उतार चढ़ाव भरे जीवन का एक गहरा चिंतन है, एक निचोड़ है।
बिल्कुल। जेम्स अर्ल जिमी कार्टर जूनियर, जन्म 1924, तो सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं, वो जॉर्जिया के गवर्नर रहे, नौसेना अधिकारी थे, किसान भी थे, और हाँ 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी। लेकिन शायद उनकी सबसे अलग पहचान उनके राष्ट्रपति पद के बाद के जीवन से बनी है।
हाँ, एक लेखक और एक वैश्विक मानवतावादी के तौर पर, है ना? बिल्कुल। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है, जॉर्जिया के एक छोटे से गांव प्लेन से निकलकर, जहां उस वक्त नस्ली अलगाव बहुत आम था, वहां से दुनिया के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचना।
और फिर जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो ये कि सत्ता से हटने के बाद उन्होंने क्या किया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सार्वजनिक सेवा की परिभाषा ही बदल दी हो।
हाँ, आपने सही नस पकड़ी है। उनकी कहानी है सिद्धांतों पर चलने की, हार के बाद खुद को फिर से गढ़ने की, और उम्र के किसी भी पड़ाव पर, खासकर आखिरी सालों में भी, सेवा की नई राहें तलाशने की।
तो आज के दौर में ये कहानी और भी ज्यादा मायने रखती है, मुझे लगता है।
सही बात है। ये दिखाती है कि बड़ी नाकामयाबियों के बाद भी, जिसे कोई बड़ा चुनाव हारने के बाद भी, एक उद्देश्यपूर्ण और असरदार जिंदगी कैसे जी जा सकती है।
तो चलिए उनके जीवन के इस लंबे सफर के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। शुरुआत वहीं से, प्लेन्स, जॉर्जिया, 1 अक्टूबर 1924।
जी, महामंदी का दौर था और दक्षिण में नस्लीय अलगाव का माहौल। ये वो दुनिया थी जिसमें उन्होंने आंखें खोली।
और घर का माहौल भी, जैसा आपने बताया, विचारों के टकराव वाला था।
हाँ, पिता अर्ल कार्टर एक सफल किसान व्यवसायी, सोच थोड़ी पारंपरिक अलगाववादी, और माँ लिलियन गॉडी कार्टर एक रजिस्टर्ड नर्स थी जिनके विचार नस्ली समानता पर काफी आगे थे।
अच्छा।
वो बिना किसी भेदभाव के अश्वेत और श्वेत मरीजों दोनों की देखभाल करती थी, और जिमी पर माँ का असर साफ दिखता है।
हाँ, उन्होंने लिखा भी है कि उस बटे हुए समाज में भी उनके बचपन के दोस्त अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे थे, खेतों में काम करके मेहनत का पाठ सीखा।
और प्लेन्स बैप्टिस्ट चर्च से सेवा, विनम्रता, न्याय, ये सब शुरुआती संस्कार मिले। ये विरोधाभास था ना, एक तरफ माँ की सीख, दूसरी तरफ समाज की हकीकत।
शायद इसी ने उनके अंदर सही गलत की एक मजबूत समझ पैदा की होगी।
हो सकता है। फिर आता है उनका नौसेना का दौर। यूएस नेवल एकेडमी अन्नापोलिस से 1946 में स्नातक हुए, वो भी टॉप 10% में।
अच्छा, इंजीनियरिंग, दिमाग, अनुशासन, ये सब वहां सीखा।
बिल्कुल। और फिर उन्हें प्रतिष्ठित परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए चुना गया। वहां एडमिरल हाइमन जी रिकोवर का उन पर गहरा असर पड़ा।
रिकोवर, वो तो बहुत सख्त माने जाते थे।
हाँ, बहुत। पूर्णता, उत्कृष्टता, बौद्धिक ईमानदारी पर जबरदस्त जोर। उनका वो मशहूर सवाल था ना, क्या तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ किया? ये सवाल कार्टर के लिए जीवन भर का एक मंत्र बन गया।
लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1953 में।
जी, पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक उभरता हुआ नौसेना करियर छोड़ दिया और प्लेन्स लौटने का फैसला किया, परिवार का मूंगफली का कारोबार संभालने के लिए। ये बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था।
एक तरह की घर वापसी, अपनी जड़ों की ओर लौटना।
और शायद यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की, कह सकते हैं, एक अनौपचारिक शुरुआत हुई। पहले स्कूल बोर्ड में काम किया, फिर 1962 में जॉर्जिया स्टेट सेनेट का चुनाव लड़ा। हाँ, और उस चुनाव में धांधली का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो लड़े, कानूनी लड़ाई जीती। इससे उनकी छवि एक सुधारक की बनी जो सिस्टम से टकराने को तैयार था।
लेकिन गवर्नर बनने की पहली कोशिश 1966 में वो नाकाम रही।
जी, और ये हार उनके लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं थी, ये एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संकट लेकर आई।
इसी के बाद वो बॉर्न अगेन अनुभव हुआ।
हाँ बिल्कुल, ईश्वर से एक गहरा निजी जुड़ाव महसूस करना। इसने उन्हें एक नई दिशा दी, एक नई मजबूती, उनके इरादे और पुख्ता हो गए।
और इसका असर दिखा फिर?
हाँ, 1970 में वो गवर्नर चुने गए। उन्होंने खुद को न्यू साउथ यानी बदलते हुए प्रगतिशील दक्षिण के नेता के तौर पे पेश किया और अपने उद्घाटन भाषण में वो ऐतिहासिक ऐलान किया, नस्लीय भेदभाव का समय खत्म हो गया है।
गवर्नर रहते हुए उन्होंने सरकारी सुधार किए, पर्यावरण पर ध्यान दिया, नागरिक अधिकारों पर जोर दिया।
जी, फिर आया 1976 का राष्ट्रपति चुनाव। देश वियतनाम युद्ध और वाटरगेट स्कैंडल से थका हुआ था, एक ईमानदार चेहरे की तलाश थी।
और कार्टर, जो वाशिंगटन की राजनीति से बाहर के थे, उनका नारा था, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात लोगों को छूटी।
बिल्कुल, और वो जीत गए, राष्ट्रपति बने 1977 से 1981 तक। इस दौरान बड़ी उपलब्धियां भी रहीं और गंभीर चुनौतियां भी।
उपलब्धियों में सबसे ऊपर तो शायद कैंप डेविड समझौता ही गिना जाएगा।
निश्चित रूप से, इसराइल और मिस्र के बीच वो ऐतिहासिक शांति संधि, सालों से कोशिशें हो रही थीं, उन्होंने कर दिखाया। चीन से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करना,
ऊर्जा और शिक्षा जैसे नए विभाग बनाना
और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में लाना, ये सब उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
लेकिन चुनौतियां भी थी। अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी, वो स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति।
हाँ, महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ, ऊर्जा संकट भी था, और उनके कार्यकाल के आखिरी साल पर ईरान बंधक संकट का साया रहा, उसने उनकी छवि को काफी धक्का पहुंचाया।
और नतीजा ये हुआ कि 1980 में वो रोनल्ड रीगन से बुरी तरह चुनाव हार गए।
जी,
ये उनके राजनीतिक करियर का शायद सबसे निचला बिंदु था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, यहीं से जिमी कार्टर की कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा प्रेरणादायक अध्याय शुरू होता है।
राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन, आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपति क्या करते हैं? संस्मरण लिखते हैं, भाषण देते हैं
ना, शायद कोई लाइब्रेरी दिनवाते हैं।
लेकिन कार्टर ने इस पूरी मतलब लीक को ही तोड़ दिया।
बिल्कुल, 1982 में उन्होंने कार्टर सेंटर की स्थापना की,
और उसका मकसद दुनिया भर में शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
गिनी वर्म जैसी भयानक बीमारी को लगभग खत्म करने में उनकी भूमिका तो अविश्वसनीय है।
और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ उनका काम, दशकों तक गरीबों के लिए घर बनाने का काम।
वो दुनिया के सबसे मशहूर स्वयंसेवक बन गए।
सही कहा, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति होने का मतलब ही बदल दिया। ये दिखाया कि सत्ता में न रहते हुए भी दुनिया पर सकारात्मक असर कैसे डाला जा सकता है। एक नया मॉडल पेश किया। उम्र, परिवार, अपनी आस्था, इन सब विषयों पर भी गहराई से सोचते हैं। 2015 में कैंसर का पता चला, उसका सफल इलाज हुआ, उसके बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। ये सचमुच एक भरपूर जीवन की मिसाल है।
तो अगर हमें जिमी कार्टर के जीवन और काम को समझना हो, तो उनके मूल विचारों, उनके दर्शन को जानना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे उनके नजरिए के तीन मजबूत स्तंभ थे।
हाँ, कह सकते हैं। पहला और शायद सबसे अहम स्तंभ है उनका व्यवहारिक ईसाई धर्म, मतलब अप्लाइड क्रिश्चियनिटी। उनके लिए आस्था सिर्फ मानने की चीज नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका थी।
यीशु की शिक्षाएं, पड़ोसी से प्यार करो, गरीबों की मदद करो, शांति लाओ, ये सब उनके काम में दिखता है।
बिल्कुल, मानवाधिकारों पर उनका जोर, उनकी कूटनीति, उनकी सेवा, सब यहीं से आता है। ये उनके काम के पीछे की असली प्रेरणा थी।
और दूसरा स्तंभ, वो इंजीनियर वाली बात दिलचस्प लगी थी।
हाँ, उनकी इंजीनियर वाली मानसिकता, समस्याओं को तथ्यों, आंकड़ों, बारीकी से अध्ययन और तर्क के आधार पर सुलझाने का नजरिया, वो नीतियों की गहराइयों में उतर जाते थे।
जैसे कैम्प डेविड समझौता,
बिल्कुल,
उसकी तैयारी में ये दिखा होगा।
बिल्कुल,
किसी जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसी तैयारी।
हाँ,
हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना,
ये उनका तरीका था।
और तीसरा स्तंभ था,
हाँ?
सिद्धांतवादी लोक लुभावनावाद।
इसका क्या मतलब हुआ?
प्रिंसिपल्ड पॉपुलिज्म,
मतलब एक ऐसा नजरिया जहाँ आप हमेशा आम आदमी के साथ खड़े दिखते हैं, उनकी चिंताओं को समझते हैं, और जो स्थापित सत्ता या अभिजात वर्ग है ना, उस पर थोड़ा संदेह रखते हैं।
अच्छा।
कार्टर मानते थे कि सरकार और नीतियां आम लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, और वो वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों में हमेशा कुछ हद तक बाहरी ही बने रहे, अपनी शर्तों पर काम किया।
इन सब के पीछे प्रेरणा क्या थी? कौन सी चीज उन्हें लगातार चलाती रही?
मेरे ख्याल से तीन मुख्य प्रेरणाएं की। पहली तो सेवा का आह्वान, ये उनकी गहरी धार्मिक आस्था से आता था। उन्हें लगता था कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना उनका फर्ज है, एक जिम्मेदारी है।
और दूसरी?
उनकी विनम्र छवि के पीछे एक महत्वाकांक्षा भी थी। हाँ, दूसरी थी सफलता की एक तीव्र इच्छा। वो साबित करना चाहते थे कि उनके सिद्धांत, उनके मूल्य सिर्फ बातें नहीं है, इनके दम पर दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर भी कामयाब हुआ जा सकता है।
और तीसरी प्रेरणा शायद 1980 की हार से जुड़ी है।
हाँ, ऐसा लगता है तीसरी प्रेरणा थी मुक्ति की, रिडेम्पशन की जरूरत। उस बड़ी हार के बाद उनका पूरा जीवन एक तरह से अपने मूल्यों को फिर से स्थापित करने और ये दिखाने की कोशिश बन गया कि भले ही उन्हें दोबारा चुनावी जीत ना मिली हो, उनका रास्ता, उनका नजरिया सही और असरदार था।
मतलब उनका बाद का काम उनके राष्ट्रपति काल का एक तरह से विस्तार या प्रायश्चित था,
कह सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके आदर्श कामयाब हो सकते हैं सत्ता से बाहर भी।
और मुश्किलों का सामना वो कैसे करते थे, हार या आलोचना से कैसे निपटते थे?
उनका तरीका था विश्लेषण करना और सीखना। जैसे 1966 की हार के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। वो अपनी आस्था से ताकत खींचते थे, एक तरह का आध्यात्मिक संतुलन बनाते थे।
और मेहनत वो तो शायद हमेशा करते रहे।
हाँ, सबसे बढ़कर उनकी अथक मेहनत करने की क्षमता। वो कभी काम से जी नहीं चुराते थे, चाहे वो खेती हो, पनडुब्बी पर ड्यूटी हो या फिर घंटों चलने वाली शांति वार्ता।
हर लंबी और घटनापूर्ण जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं। कॉटर के जीवन में ऐसे कौन से तीन सबसे अहम मोड़ हम गिन सकते हैं?
पहला मोड़ तो मेरे हिसाब से 1953 में उनका प्लेन्स लौटना था। सोचिए जरा, एक कामयाब नेवी ऑफिसर, परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम का हिस्सा, सब छोड़कर गांव वापस आना और मूंगफली का बिजनेस संभालना।
ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर कर्तव्य और परिवार को चुनने जैसा था।
बिल्कुल, और ये अहम इसलिए था क्योंकि इसने उन्हें उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा। इसी वापसी ने उन्हें स्थानीय मुद्दों से रूबरू कराया और धीरे धीरे राजनीति का रास्ता खोला। ये वो पहला बड़ा कदम था जहां उन्होंने निजी तरक्की के ऊपर सेवा और जिम्मेदारी को रखा।
शायद इसके बिना वो कभी राष्ट्रपति कार्टर बनते ही नहीं।
शायद नहीं। दूसरा निर्णायक मोड़ था 1966 में गवर्नर का चुनाव हारना और उसके बाद का आध्यात्मिक पुनर्जन्म।
हाँ, वो हार बहुत बर्बरी थी, है ना?
बहुत। वो एक ऐसे उम्मीदवार से हारे थे जो नस्लीय अलगाव का खुला समर्थक था। ये हार उनके लिए सिर्फ राजनैतिक नहीं थी, बल्कि नैतिक और व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बड़ा झटका थी। इसने उन्हें मतलब तोड़ के रख दिया था।
और इसी संकट से वो बॉर्न अगेन अनुभव निकला।
जी, जिसने उन्हें एक नई स्पष्टता और मजबूती दी। राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने सीखा कि लोगों से कैसे जुड़ना है, अपनी बात कैसे रखनी है। कह सकते हैं कि ये हार वो भट्टी थी जिसमें तपकर उनके भविष्य के विश्वास और इरादे और मजबूत हुए।
और तीसरा मोड़ जाहिर है 1980 की राष्ट्रपति चुनाव में हार ही होगा।
बिल्कुल, रोनाल्ड रीगन के हाथों वो करारी हार। वो उनके राजनीतिक जीवन का अंत लग सकता था, लेकिन असल में ये उनके जीवन के दूसरे और शायद दुनिया के लिए ज्यादा प्रभावशाली अध्याय की शुरुआत थी।
वो कैसे? हार से शुरुआत कैसे हुई?
इस हार ने उन्हें पार्टी की राजनीति की सीमाओं से आजाद कर दिया। अब वो किसी दल या वोट बैंक के प्रति जवाबदेह नहीं थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की भूमिका को ही नए सिरे से गढ़ दिया।
कार्टर सेंटर बनाया।
हाँ, दुनिया भर में लोकतंत्र बहाली के लिए चुनावों की निगरानी की, बीमारियां मिटाने का बीड़ा उठाया, शांति के लिए काम किया। इस हार ने उन्हें एक पराजित राजनेता से एक सम्मानित वैश्विक स्टेट्समैन बनने का रास्ता दिखाया। ये नाकामी को कामयाबी में बदलने की एक असाधारण मिसाल है।
तो जिमी कार्टर के इस भरपूर जीवन से आज हम क्या सीख सकते हैं? आज के समय में उनकी कहानी हमारे लिए क्यों मायने रखती है?
देखिए, कई गहरे सबक हैं इसमें। पहला और सबसे बड़ा सबक तो है नाकामी से सीखने और उभरने की कला। कार्टर की जिंदगी ये बार बार दिखाती है कि बड़ी पेशवर हार, चाहे वो 1966 की हो या 1980 की, कहानी का अंत नहीं होती। वो एक नई, शायद ज्यादा सार्थक शुरुआत हो सकती है।
दूसरा, सिद्धांतों और ईमानदारी का महत्व। उनका जीवन दिखाता है कि नैतिक मजबूती और अपने मूल्यों पर टिके रहना भले ही आपको छोटी अवधि में राजनीतिक जीत ना दिलाए,
हाँ,
लेकिन एक संतुष्ट जीवन और लंबे समय तक टिकने वाले सम्मान की बुनियाद यही है। शायद आज की राजनीति में ये याद रखना और भी जरूरी है।
सही बात है। तीसरा सबक उनकी भरपूर जीवन की अपनी परिभाषा में छिपा है। सेवा ही असल में भरपूर जीवन है। कार्टर के पैमाने पर जिंदगी की सार्थकता पैसे, ताकत या शोहरत से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से कि आपने दूसरों की जिंदगी पर कितना सकारात्मक असर डाला है।
बिल्कुल, और उनकी जिज्ञासा भी देखिए। उम्र भर सीखते रहने का जज्बा, परमाणु विज्ञान से लेकर लकड़ी के काम तक, वो हमेशा कुछ नया सीखते रहे। ये दिखाता है कि दिमाग को खुला रखना और जिज्ञासा बनाए रखना कितना जरूरी है।
और आखिर में उद्देश्य को फिर से खोजना। उनकी कहानी ये बताती है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रिटायरमेंट के बाद भी आप एक नया मकसद ढूंढ सकते हैं और समाज के लिए अहम योगदान दे सकते हैं।
90 पार की उम्र में भी उनका सक्रिय रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ना?
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें 3 सबसे जरूरी बातें चुननी हो, एक जो दिल को छू जाए, एक जो दिमाग को सोचने पर मजबूर करे और एक जो हम सबकी जिंदगी में काम आए, तो वो क्या होंगी?
एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि तो ये है कि 1980 की उस विनाशकारी हार जैसी गहरी नाकामी को दशकों की उद्देश्यपूर्ण वैश्विक सेवा में बदल देने की उनकी अंदरूनी ताकत, ये सत्ता खोने के बाद उससे परे जाकर अपने काम में अर्थ और एक तरह की मुक्ति खोजने की कहानी है। ये दिखाती है कि हार को जीत में बदला जा सकता है, बस जीत की परिभाषा बदलने की जरूरत है।
ये बहुत गहरा है। और एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि
वो ये है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति होने की भूमिका को पूरी तरह से नया रूप दिया। उन्होंने साबित किया कि सत्ता में न होते हुए भी नैतिक अधिकार और सीधे जमीनी काम के जरिए डाला गया प्रभाव शायद राजनीतिक पद की सीमाओं से कहीं ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि पद छोड़ने के बाद भी प्रासंगिक कैसे रहा जाता है।
सही बात है। और एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके काम आए,
वो हमें एडमिरल रिकोवर के उस सवाल की याद दिलाती है, व्हाई नॉट द बेस्ट, यानी सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं। ये हमें खुद से पूछने को उकसाती है कि क्या हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, क्या हम बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना की परवाह किए बिना अपने मूल सिद्धांतों पर चलते हुए दूसरों की सेवा में अपनी पूरी क्षमता लगा रहे हैं।
ये एक सवाल है जो हम सब अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुद से पूछ सकते हैं।
बिल्कुल।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 31 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।